તારીખ 17/3/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 449 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 628
पोस्टकार्ड चल गया है, चौथे पोस्टकार्ड में और दूसरा विषय लिया है, अलग अलग पोस्टकार्ड में विषय बदला है। आत्मा को भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना से विचार करने में लोक संगना, ओक संगना और असत्संग ये कारण है, जिन कारणों में उदासीन हुए बिना निसत्व ऐसी लोक संबंधी जप तपादि क्रियाएं साक्षात मोक्ष नहीं है। क्रिया में साक्षात मोक्ष नहीं है, परंपरा मोक्ष नहीं है, ऐसा माने बिना और निसत्व असत शास्त्र और असत गुरु जो कि आत्मस्वरूप के आवरण के मुख्य कारण हैं, उन्हें साक्षात आत्मघाती जाने बिना जीव को जीव के स्वरूप का निश्चय होना बहुत दुष्कर है, अत्यंत दुष्कर है। यहाँ एक वाक्य पूरा होता है, क्या कहते हैं आत्मा को विचार करके निर्णय करने को कोई जाता है, आत्मा का निश्चय करना को बनता है, उसमें बहुभाग कल्पनाएं हो जाया करती है। आत्मस्वरूप का निश्चय करने वाले को ऐसा क्यों होता है, इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। जो जिसमें आत्मस्वरूप का प्रतिपादन किया है और जो ज्ञानी के वचनों में भी आत्मस्वरूप का प्रतिपादन सुनने में आता है, प्रत्यक्ष या कैसेट के द्वारा या शास्त्र द्वारा पढ़ने में आता है, तो मेरी आत्मा ऐसी है ऐसा एक कल्पना बहुभाग हो जाती है और यथार्थ निश्चय नहीं हो पाता है। यथार्थ निश्चय है कि स्वरूप की पहचान और भावभाषण होने से दूसरा संकेत है, लेकिन पहला संकेत भी हुआ नहीं हो उसको दूसरा संकेत का प्रोसेस कैसे चलेगा और उसका यथार्थ निश्चय होगा भी कैसे, क्योंकि नहीं सकता। फिर भी पढ़ करके या सुन करके कोई निश्चय करता है तो उसको कल्पना हो जाया करती है। ऐसी कल्पना होने में तीन कारण मुख्य है। एक बड़ा कारण है सबसे, वो लोक संगना है। लोक संगना में लौकिक पद्धति से, रूढ़िगत पद्धति से जीव धार्मिक प्रवृत्ति करता है और लोगों की नजर में मेरा क्या स्थान है वही देखता रहता है। जो संप्रदाय में हो, जिस ग्रुप में हो, जैसे मुझे 25 जने इकट्ठे होते हैं, 25-30 जने इकट्ठे होते हैं, तो उनमें मेरा क्या स्थान है, मैं स्वाध्याय करता हूँ, मैं कुछ बातें बोलता भी हूँ, तो मेरा कोई स्थान है उसमें, ऐसी एक कल्पना उसको कहते हैं लोक संगना। दूसरों की दृष्टि में मेरा क्या है, मेरा इम्प्रेशन क्या है, मेरा स्थान क्या है, मेरी छाप क्या है, मुझे लोग कैसे गिनते हैं, मेरी गिनती कैसे होती है, ऐसे अनेक प्रकार के जो परिणाम हैं उन लोग सुनना है। ऐसा परिणाम जिसको भी रहता है उसको आत्मस्वरूप का यथार्थ निश्चय होना दुष्कर है, यानी हो ही नहीं सकता, फिर भी वो पढ़ करके करेगा। सूक्ष्म है तो बात तो समझ में आएगी कि गुण ऐसे हैं, पर्याय ऐसी है, द्रव्य ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, ये है वो है, लेकिन वो सब कल्पना हो जाएगी, कल्पित हो जाएगी बात। या ये भी एक प्रश्न हो सकता है कि जब हमारी समझ शास्त्र से बराबर मिलती जुलती है तो फिर कल्पना क्यों, फिर उसको कल्पना कैसे कहें, ये प्रश्न यहां हो सकता है। फिर भी ये कल्पना तो कल्पना ही है, इसलिए कल्पना है कि ऐसा ज्ञान में स्वरूप सीधा भाषित नहीं होता, और भाषित नहीं होने से अनंत महिमावंत पदार्थ की जिस पैमाने में, जिस अनुपात में जो महिमा उठनी चाहिए सहज रूप से वो नहीं उठेगी। कभी कृत्रिम महिमा करेंगे, लेकिन सहज जो चलनी चाहिए स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ के साथ और बार बार स्पष्ट रूप से स्वरूप ज्ञान में आ जाए, ऐसा बनेगा नहीं, तो इसलिए वो कल्पना है। चाहे शास्त्र अनुकूल समझ हो गए तो भी वो लोकसंज्ञा के कारण से भी है, और वो बात ओकसंज्ञा के कारण से भी ऐसी बात बनती है। ओकसंज्ञा में क्या है कि क्रम में तो जीव आया नहीं, और क्रम में आगे बढ़कर के अवलोकन होकर के भेद ज्ञान पूर्वक स्वभाव विभाव की जाति पहचाने बिना निश्चित तो होगा नहीं, पहचान तो होगी नहीं। जब ये नहीं हो सकता है यथार्थ रूप से, तब कुछ न कुछ तो जो पढ़ा है सुना है उससे कल्पना बनेगी, तो ओक संज्ञा से बनता है। बड़े शास्त्र अनुकूल हमारी समझ होता है, उनको धोखा यही होता है कि देखो जैसा मेरे मेरे विचार है, मेरी समझ है, वैसा ही शास्त्र में बहुत जगह मिलता है मेरे को, क्या जगह जगह मुझे वो बात मिलती है। जैसे मूल स्वरूप ध्रुव है, परिणामी है, वो बात मिलती है दृष्टि प्रकाश में से, तो बहुत मिलती है, लेकिन वो जीव कभी ओक संज्ञा का विचार भी नहीं करेगा, क्यों, तो उनको तो पक्का हो गया है कि बस जैसे मेरी समझ है वैसा शास्त्र ऐसा ही बात करता है, ज्ञानी ऐसे ही बात करते हैं, तो फिर वो बात में क्या होना चाहिए, ऐसा पक्का हो जाएगा। लेकिन योग संज्ञा कभी भी बिना प्रयोग मिटती नहीं, योग संज्ञा में कोई क्षति रह गई है, यानी सही समझ होने पर भी जो क्षति है वो इस बात की है कि प्रैक्टिकल साइड का जो प्रयास है और प्रैक्टिकल नॉलेज वाली जो बात है उनका लैकिंग पॉइंट है, वो बात का नाम बात नहीं है, प्रैक्टिकल साइड नहीं है इसके पास, तो प्रयोग करके उस बात का निश्चय नहीं किया है, प्रयोग करके नहीं किया है, ऐसे ही सुन के पढ़ करके। बहुभाग ऐसा भूल होता है कि हम क्रम से नहीं चल करके जो भी हमने अलग अलग बातें सुनी हैं उस पर से समाधान ले लेते हैं, और जब समाधान आएगा तो कषाय तो बंद होगा ही, तो निरस्ता तो कुछ न कुछ रूप में आएगी, लेकिन वो यथार्थ नहीं है। ऐसे तो वैराग्य में आकर के दीक्षा भी लिया है हमने, जिन दीक्षा लिया है और त्याग किया है, निरस होकर के त्याग किया है, संसार के भोग उपभोग में पंचेंद्रियों के विषय में निरस होकर के त्याग किया है, लेकिन परिभ्रमण यूं का यूं रहा है, इसका कारण क्या है? कि हम ज्ञानी के मार्ग पर नहीं चले थे। बड़ू के शब्द नहीं कहे तो ज्ञानी के मार्ग पर नहीं चले थे, हमारी मनमानी कर ली थी हमने, ऐसा नहीं करना, इसलिए एक ही काम के पीछे लगा, वरना वो एक लेशे लगे बिना वो आएगी, वो चालू शुरुआत भी नहीं होगी। वो भी एक कल्पना है, अगर वो करना ही है तो यथार्थ रूप से करो ना। जैसे उदासीनता लाना है खाने में, तो हमारे खाने में हमारी सुख बुद्धि और हमारे शरीर की आधार बुद्धि और हम खा सकते हैं ऐसी भोक्ता बुद्धि, कर्ता बुद्धि, ये हमारे परिभ्रमण का कारण ऐसा देख करके उदासीनता लाई जाती है, और दूसरे दूसरे न्याय से भी उदासीनता लाई जाती है। तो हम हमारी भूमिका का प्रयोग करें या दूसरे दूसरे बातों का प्रयोग करें, हमें क्या करना चाहिए? और फिर हम ये कहेंगे कि हमको तो चिंतना आती नहीं है, तो हम तो काम तो दूसरे दूसरे में लग जाते हैं। जैसे एक विद्यार्थी है, बच्चा है, उसको पहली किताब पढ़ना है, लेकिन ऊपर वाले की किताबों में भी माथा लगाता है, बोले थोड़ा बहुत लगाता है लेकिन लगाता रहता है, पर खुद का तो होमवर्क छूट जाता है, बात ऐसी हो रही है। इसलिए बार बार इस बात को कहकर के ध्यान दिलाया जाता है, इस वही कारण है इसका, कैसे जाने अनजाने में कई प्रकार के असमाधान उठते हैं और अलग अलग समाधान करने में हमारा विचार चल जाता है। बहुभाग मुमुक्षु को ये होता है कि कई प्रकार के भाव उठते हैं, उसको ठीक करने के लिए कई बहुत सी बातें सुनी हैं, समझी हैं, धारणा में भी हैं, कहीं ना कहीं कहीं क्या एप्लीकेशन कर देते, कभी किस बात का एप्लीकेशन कर देते, कभी इस किस बात का एप्लीकेशन एप्लीकेशन और लक्ष्य में रहना चाहिए। अगर लक्ष्य रहता है तो कुछ ठीक है, कुछ ठीक है, पूरा ठीक तो इसलिए नहीं कि उसमें भी परिभ्रमण देखे तो पूरा ठीक है, उसमें ही परिभ्रमण देखे, लेकिन कुछ मंद हो गए और हम वेदना के विषय में उसको कनेक्ट करें तो कुछ ठीक है, है? तो सुगानी जी ने इस विषय पर बहुत कड़ा निषेध किया है, इस तरह बात इसी स्टाइल की है, दृष्टांत तो लागू पड़ता है, इसलिए लेते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय की बात गुरुदेव ने बहुत कही, सैकड़ों न्याय निकाले, और वर्तमान जैन साहित्य में ये बात प्रचलित नहीं थी, एक नई बात लोगों को मिली और बहुत सुंदर बात भी है, लेकिन ये ज्ञान दशा का विषय है, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में से वो बात निकली है, और ये ज्ञान दशा का विषय है, अकर्तापने होने का विषय है। अब क्या है कि मुमुक्षु लोग भी कहीं न कहीं समाधान लेने के लिए क्रमबद्ध पर्याय को लागू कर देते हैं कि जैसा होना था वैसा हुआ, हम क्या करें, कुछ लॉस हो गया, कोई नुकसान हो गया, कोई आकुलता का कारण बन गया, तो वैसे ही पर्याय होने वाले थे, छोड़ो इसको, अपने को मुख्यता नहीं देना है, जो होना था सो हो गया, ऐसा ही स्वकाल था वो था वो, बात पावरफुल है इसलिए खुशाई तो मुद्द हो ही जाएगा। जीव को झूठा समाधान क्या आएगा कि देखो हमारी समझ है तो हमको कषाय तीव्र होने होने वाला था, ऐसे ऐसे प्रसंग में हमको तीव्र नहीं हुआ, हमारा कषाय अगर ऐसी समझ नहीं होती तो तीव्र हो जाता, इस समझ के कारण से तीव्र नहीं हुआ, फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ज्ञान भी है और ज्ञान का लाभ भी मिला। सुगानी जी ने फटकारा है इस बात को कि जैसे अघोरी विष्ठा खाने में संतुष्ट होता है, भुंड और अघोरी इसका उपमा दे दिया है, भुंड विष्ठा खाने में और अघोरी मांस खाने में जैसा संतुष्ट होता है वैसा यहाँ ऐसा समाधान लेने वाला संतुष्ट हो रहा है। तो उसमें पॉइंट क्या है कि अपनी भूमिका का समाधान वो नहीं करता है, इसलिए उसका कड़ा निषेध कर दिया है, कि बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, ऐसा करके अघोरी मांस खाता है वो बात कर दिया उधर, कि समाधान तुम नहीं करते हो तुम मांस खाते हो, ऐसा वो बोल दिया। तो भले ही वो क्रम की इतनी बात नहीं करते थे, फिर भी ज्ञान में तो सब बात वैसे ही आ जाती है ज्ञान दशा में, तो ऐसी बातों का दृष्टांत वो क्यों देते हैं, स्पष्टतया क्रम से नहीं बताते हैं, लेकिन कोई उल्टा क्रम से उल्टा बात करता है तो उनको निषेध बिना समझाए कहाँ से आया, उनको कोई समझाने नहीं गया था क्रम वाली बात, हमने कभी की भी है, फिर भी नेचुरली आती है, स्वाभाविक रूप से आती है। तो यहाँ तो अपन छानबीन करके इस बात को लेते हैं कि देखो काम पद्धति से करना है, काम हमको पद्धति से करना है, पद्धति छोड़ करके नहीं करना है, ऐसा लगा। क्या कहते हैं, ओग संज्ञा का जो विषय है वो बहुत धोखे में रह जाए ऐसा विषय है, क्योंकि जो समझ पूर्वक विचार पूर्वक बात सम्मत होती है उसमें ओग संज्ञा देखने में नहीं आती, लेकिन हमने थियोरी को समझा है प्रैक्टिकल को नहीं समझा है, वो बात कम लोगों के ध्यान में आती है, बहुधा नहीं आती है। और ओक संज्ञा में कोई जीव कोई मुमुक्षु ज्यादा शास्त्र अभ्यास कर लेता है या ज्यादा काल तक उसमें टिक जाता है तो ओक संज्ञा बहुत तीव्र हो जाती है, फिर इस ओक संज्ञा के विरुद्ध जो प्रयोग है जो ओक संज्ञा को तोड़ करके सही परिस्थिति में लाने वाली चीज है वो बात उसकी अरुचि का विषय हो जाएगा, वो बात क्या होगा उसकी अरुचि का विषय हो जाएगा, ऐसा हमने कई जगह देखा है, प्रत्यक्ष ओर से देखा है कि देखो शास्त्र तो बहुत समय से पढ़ते हैं, मैंने 50-50 साल पुराने मुमुक्षु में शास्त्र स्वाध्याय बहुत अच्छा होता है, दूसरों को भी वो प्रवचन देते हैं, ऐसे लोग हैं ओक संज्ञा में चलते हैं और ओक संज्ञा छुड़ाने के लिए कोई बात सामने आती हो तो उनको अरुचि होती है, ग्रहण तो नहीं कर सकते लेकिन उसकी रुचि में वो बात नहीं आ सकती है, ऐसी एक बहुत जटिल विरुद्ध परिस्थिति हो जाती है। इसलिए ओक संज्ञा को शुरू से ही प्रयोग की भूमिका में आगे बढ़ करके ओक संज्ञा में आना ही नहीं है, हम लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, सतर्क तो पहले से चेती जब गुजराती में आपने चेती जब पहले से कि हमको ओक संज्ञा में कभी नहीं आना है, जो भी बात हम समझे, सम्मत करें, फिर प्रयोग से उसका फाइनलाइज, उसको फाइनलाइज करें। समझ लिया, सम्मत कर लिया, इसलिए फाइनल हो गई है वो बात, हमारी कार्य पद्धति में नहीं है, ये हमारी कार्य पद्धति में है ही नहीं। बात नहीं समझे, समझ में आए वहां तक तो समझने की कोशिश करो, ये को समझ की भूल है। समझ की भूल निकल गई, शास्त्रों और ज्ञानी के वचन सम्मत होने लगे, तो ये फुल एंड फाइनल हमारी समझ नहीं। चलेगा, चल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा, और उसी लाइन पे आगे बढ़ने लगेंगे, ये बात हो जाएगी। इसलिए जहां भी हमारे परिणाम दोष के दिखे, उनको मिटाने के लिए हम दूसरे दूसरे समाधान को नहीं लेकर के उसी में ही हम हमारे परिभ्रमण को देखें, वही लागू करें, हमारी भूमिका वाली बात लागू करें, उसको ही अनुसंधान करें हम, तो ये वेदना आने की तैयारी हो जाएगी। उसी प्रकार से वेदना आने की तैयारी होती है जिसको होती है, और नहीं होती है तो उल्टा सुल्टा होता है, तो नहीं होती है। ये बात है, इसलिए कार्य पद्धति तो सही होनी चाहिए, गलत कार्य पद्धति से तो बिगड़ता ही है, जैसे हलवा बिगड़ता है वैसे, समझ लेना। गुरुदेव भी वही बात करते थे, हलवा का दृष्टांत में वही बात करते थे कि पद्धति से काम करो। गुरुदेव तो कितना उस बात को डेवलप करते थे दृष्टांत में कि 500 हजार साल पहले कभी दूसरी पद्धति से हलवा बना नहीं, किसी ने बनाया नहीं, और हजारों साल के बाद भी दूसरी पद्धति से हलवा बनने वाला नहीं है। पछी निषेध करवा माटे एम के कोई गमे एवी डाईनी दीकरी न होय एम कहीने वात करे छे, केम के स्वच्छंद करे छे, तो मैं तो बहुत होशियार हूँ, अत्यार सुधी लोको आवे ते शेरो करता था, हूँ बीजी रीते करी दईश के कोई गमे एटली डाईनी दीकरी न होय के शेरो करवा जाशे, बीजी रीते करवा जाशे तो शेरो बगड़ी जवानो छे, एक एक काम मतलब क्या है उस दृष्टांत का, मतलब क्या है कि पद्धति से काम करो, ये साइंस है, साइंस में तो साइंस से ही काम होता है। जैसे एक तबीबी विज्ञान है, इसमें आयुर्वेद भी है और एलोपैथी भी है, एलोपैथी से काम लेते हैं, गड़बड़ होती है कि नहीं होती, क्योंकि वो नेचुरलिटी पर नहीं जाते, आर्टिफिशियलिटी पर जाता है, वो भी एक साइंस है, लेकिन उसमें जो डिफेक्ट है वो है कि वो अननेचुरल प्रोसेस में चले जाते हैं। तो नुकसान होता है, कुछ न कुछ तो साइड इफेक्ट में नुकसान हो ही जाता है, और ये लोग नेचुरल प्रोसेस में रहते हैं तो मूल में सिक्योर होते हैं कि नहीं, क्योंकि साइंस बदला नहीं जाता। जो ह्यूमन बॉडी है, इनका जो विज्ञान है, वो विज्ञान ऋषियों ने मुनियों ने, ये आयुर्वेद तो भगवान के दिव्य ध्वनि में से निकला है, हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद के शास्त्र भी लिखे हैं, हम वो कन्नड़ और तमिलनाडु में रिसर्च करते थे तो हमारे रिसर्च में ज्योतिष के और आयुर्वेद के शास्त्र भी आए हैं, हम टच नहीं किया, वो अलग बात है, उसको कौन करके रख दिया एक साइड में, लेकिन रिसर्च करने वाले को तो जो जो भी शास्त्र आया उसका रिसर्च करके हमको डेटा भेज दिया, ये शास्त्र में ये सब्जेक्ट है, ये बात है, वो बात है, इसने लिखा है। तो ज्योतिष के आयुर्वेद के शास्त्र वो भी भगवान की वाणी में आया है। हाँ, उसका अधूरा ज्ञान होने में से जो नुकसान होता है वो दूसरी बात है, बाकी आयुर्वेद में जो आया है बहुत डीपली बात आया है। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मा को, आत्मा एक पदार्थ है, इनके स्वयं के गुणधर्म हैं, उनका वैज्ञानिक नीति नियम है, और उसका जो सुधार होने का है वो भी एक वैज्ञानिक प्रयोगात्मक पद्धति है। और तीर्थंकरों ने और ज्ञानियों ने वो अनुभव सिद्ध किया है और प्रसिद्ध किया है, अनुभव से प्राप्त किया है और उसको प्रसिद्ध भी किया है, जाहिर किया है। हमको इसको फॉलोअप करना है तब तो हम इसके फॉलोअर हैं। अगर हम उसको इसको फॉलोअप नहीं करें और हमारी मनमानी करें तो हम फॉलोअर भी कहाँ के, वो बात रहती नहीं। इसलिए ओक संज्ञा में कभी नहीं रहना है, और नहीं रहने के लिए शुरू से ही प्रयोग पद्धति में, अनुभव पद्धति में जाना है, और कोई भी बात ऊपर की भूमिका के नीचे की भूमिका के हो प्रयोग से हमें समझना है। बिना प्रयोग उसको फाइनलाइज करके सम्मत नहीं करना है कि हमको समझ में आ गया, वो समझ ओक संज्ञा वाली है, ऐसा हमेशा हमेशा हमको ख्याल में रखना है। ओक संज्ञा पर पूरा एक चैप्टर लिखा जा सकता है, ऐसी बात है, बहुत सी भूलें इसमें होती है, एक आर्टिकल लिखा जा सकता है। और असत्संग, जिसको असत्संग की रुचि है, जहां सत्संग नहीं हुए, ऐसे जो लौकिक जन हैं, चाहे वो कुटुंब परिवार के हो, चाहे सगे संबंधी हो, चाहे ज्ञाति जाति के हो, चाहे हमारे गांव के मोहल्ले के हो या हमारे बाजार के हो, इसकी हमें रुचि है, उसके साथ रहना, उसको मिलना जुलना, उसके मिलते जुलते रहना, और उसमें हमको अच्छा अर्पण लगना। वो शास्त्र पढ़ेगा तो भी कल्पना करेगा, आत्मस्वरूप का निश्चय करने में कल्पना उसको हो जाएगा, ये बात बनने वाली है। और ये भी बात लेना है कि सत्संगी होते हैं फिर भी सत्संग कराना वाला, कराने वाला यथार्थ नहीं कराता है। तो वहां सत्संग नहीं है, तो वहां सत्संग नहीं है तो क्या है, असत्संग है। कुसंग तो हो सकता है, कोई उल्टी छोटी बातें ना होती हो तो, वरना सत्संग नहीं है तो असत्संग है। सत्संग का अभाव, मैंने असत्संग, ए मैंने अभाव, तो वहां भी सतर्क हो जाना है। हमको असत्संग का सेवन नहीं करना है, कुसंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन असत्संग का भी सेवन नहीं। और ऐसा सेवन ऐसे हो जाता है कि वो सत्संग कराता है तो बात बात में हमारी प्रशंसा भी करता है, हम तो बहुत समझदार हैं, हमारी बात को पकड़ते हैं, हम तो बहुत समझदार हैं, और हमको अच्छापन लगे, हम असत्संग में शामिल होते रहे। ये असत्संग की रुचि है, वो भी आत्मस्वरूप की कल्पना होने में और यथार्थ निश्चय नहीं होने देने में कारण बनता है। बहुत गहराई से कृपालु देव ने तीन कारण लिए हैं, उसमें बहुत गहराई है, बहुत सोची हुई बात से का निचोड़ रख के दिया है एक रचना पर, नहीं समझना है। ऐसा एक लोक संज्ञा में है कि जैसे लोक संज्ञा वाला सत्संग कराएगा तो लोक संज्ञा में उसको क्या होगा, मैं कुछ नई नई बातें रखूं तो लोगों को अट्रैक्शन बना रहे हैं मेरी बातों का, वो कि वो बात कहते रहेंगे लोगों को रस नहीं आएगा, तुम्हें ये तो बात सुनी हुई है, ऐसा हो जाएगा। इसलिए कुछ न कुछ नए नए पॉइंट, नए नए न्याय, नई नई बातें हमारे सत्संग में हमको निकालना चाहिए, इसलिए ये जो अट्रैक्शन है वो बना रहे हैं सुनने वाले को। ये नई नई बात में वो नई नई कल्पना में चढ़ जाएगा, पता है उस खुद को नहीं चलेगा, क्योंकि उसको लोक सुनना है। तो आत्मा की बातें नई नई करने में नई नई कल्पना में आ जाएगा, ये भी कल्पना का कारण है। तो सवाल पूछे रहते हैं, श्रद्धा तो बात की बात है, अभी तो निश्चय होने का सवाल नहीं है, ऐसा कहते हैं। ऐसे बहुत से प्रकार और पड़खे सोच करके कृपालु देव ने एक वचनामृत में ये तीन कारण रखे हैं। जो आपको सत्संग कराते हैं उनको ये पूछो कि आप प्रयोग कैसे किया इस बात का, आप क्या सुनते रहे, आप प्रयोग कैसे किया इस बात का, ये प्रयोग सिद्ध हुआ है क्या, ले जाओ चर्चा को प्रयोग के एजेंडा पे ले जाओ। एक बात इस तरह से भी चेक होती है, दूसरा चेक सकता भी है और ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है, फिर क्या करें। सुनने वाले को तो ये लगेगा इन्फेरियरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में कि हम तो उतनी, हमारी समझ तो उसकी समझ है उतनी तो है ही नहीं, वो कम ज़्यादा समझदार है, हम कम समझदार हैं, तो वो सत्संग कराते हैं, हम सत्संग करते हैं इनके साथ, इस तरह से इन्फेरियरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में चलेगा, इस तरह से भी सत्संग हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति होवे कि हमारा क्षोभ्रम कम होवे और कहने वाले का क्षोभ्रम अधिक होवे, और ये संभवित परिस्थिति होती है सत्संग कराने वाले में, तो हमें फिर क्या करना, हमें ये देखना है, हमको इसकी परीक्षा करने के पचड़े में नहीं जाना है कि वो कैसा है वैसा है, वो हमारा ड्यूटी नहीं है। जैसे आपने किसी को कहा आप लेट आते हो अच्छा नहीं है, तो आप भी लेट आते हो, तो इसके पचड़े में हमको नहीं जाना है, उसका वो जाने। इनके सत्संग के निमित्त से हमारे आत्मकल्याण के विषय में हमारी फीलिंग क्या उत्पन्न होती है, हमको फीलिंग टच करना है, समझ को टच नहीं करना है, हमको क्या क्या बात समझने को मिली वो बात को हमें नहीं विचार करना है, क्योंकि वो तो वो कई प्रकार की बात समझा हुआ है तो कई प्रकार की बात समझाएगा, और हमको समझ में भी आएगी या समझने को मिलेगी, पर मान लेगा कि हमको लाभ हुआ, ऐसी बातें हमने सुनी भी नहीं थी, कैसी कैसी बातें सुनाई तो लाभ मिला, कुछ लाभ उसके निमित्त से लाभ हुआ कि नहीं हुआ, कैसे नहीं देखना। हमको हमारा आत्मकल्याण करना है, एक ही हमारा प्रयोजन है, और उस प्रयोजन के अनुकूल जो बातें हैं वो हमको स्पर्श करती है करेगी, जो अगर हमारा हेतु शुद्ध है तो किस कैसे कैसे टच करती है, कैसे फील होती है, उस फीलिंग से नापा जाता है कि यथार्थ है या यथार्थ, उस तरह से है सत्संग और सत्संग को हमको हम परख सकते हैं हमारे अनुभव से हमारी फीलिंग से हम उसकी परख कर सकते हैं। जिसका वो दृष्टिकोण नहीं है वो फिर अकेले समझ में जाएगा कि देखो क्या क्या बातें वो समझाता है। और ज़्यादा पढ़ा लिखा हो बहुत शास्त्र पढ़ा लिखा हो तो ज़्यादा बात समझाएगा नई नई बात भी समझाएगा शास्त्र वाली बात समझाएगा शास्त्र निकाल निकाल करके समझाएगा देखो सर्वा सिद्धि में ऐसा कहा है पूज्यपाद स्वामी ऐसा कहते हैं समझभद्र स्वामी ऐसा कहते हैं इधर वो है उधर वो है उधर वो है। हम इतने पढ़े लिखे नहीं हों तो लाभ तो मिलता है ऐसे लाभ नहीं लेना है। मतलब क्या है इस बात का कि हमको बहुत दरकार करके आगे बढ़ना है बेदरकारी से हमें नहीं चलना है इस लाइन में। अनंत काल गया बेदरकारी में हमारा हमको बेदरकारी में नहीं चलना है बिल्कुल एकदम दरकार दरकार से चलना है और पूरी दरकार करना है अधूरी भी नहीं करना है पूरी दरकार से आगे बढ़ना है। इस तरह से अगर हम बढ़ेंगे तो नुकसान की साइड है वो बंद हो जाएगी वरना लाभ लेने को जाएंगे और व्यवसाय हो जाएगा नुकसान का बहुत चांस है नुकसान होने का ये चीज़ ऐसी। इसलिए कृपालु देव ने 693 पत्र में एक बहुत सुंदर गाइडलाइन दिया है कि अवगाढ़ता ज्ञान ज्ञान मार्ग में ऐसा करके लिखा है ज्ञान मार्ग क्रिया मार्ग और भक्ति मार्ग तीन की चर्चा किया है और कहते हैं ज्ञान मार्ग दुराराध्य है। दुराराध्य मैंने क्या नुकसान के चांसेस बहुत है उसमें। परम अवगाढ़ दशा पाने से पहले उस मार्ग में पतन के बहुत स्थान है नुकसान के बहुत स्थान है। ये परम अवगाढ़ दशा माने क्या किसको परम अवगाढ़ दशा कहे वो मुख्य सूत्र ये सोचेगा हमारी परम अवगाढ़ दशा कहाँ से हो सकती परम अवगाढ़ भावना की बात है। भावना की जो दशा है वो परम अवगाढ़ हुए बिना ज्ञान मार्ग में प्रवेश करने में नुकसान होगा होगा और होगा ही क्योंकि भावना है ये फीलिंग स्टेज का विषय है और परिभ्रमण की चिंतना और वेदना ये भावना का ही स्वरूप है दूसरा कुछ नहीं है। यथार्थ भावना यहाँ से चालू होती है इसके पहले भावना यथार्थ हो ही नहीं सकती है ये फर्स्ट स्टेज है भावना का। तो ऐसी अवगाढ़ भावना की दशा हुए बिना ज्ञान मार्ग में पतन होने का बहुत स्थान है इसमें कुछ एक गिनाया है ये बहुत स्थान है उसमें बात गर्भित रखती है कि बहुत स्थान है। कोई कैसे गिरेगा कोई कैसे गिरेगा कोई कैसे गिरेगा खुद को ही पता नहीं लगेगा। तो उस सिद्धांत और नियम को प्रतिपादन करके फिर आगे इसके विषय में मार्गदर्शन दिया है वो विषय कल के स्वाध्याय में विस्तार से।